नमस्कार मित्रों, अभी हम मनुस्मृति पे पॉडकास्ट बना रहे हैं। इस पे मनुस्मृति के पहले अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मनुस्मृति भारत में अभी शुरू से बहुत काफ़ी समय से काफ़ी विवादित पुस्तक रहा है। कहा यह जाता है कि समाज में अभी जो भी जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का जो खतरनाक रूप हम देखते हैं, वो इस मनुस्मृति की देन है। अभी हम देखेंगे, हम इस बात की जांच पड़ताल करेंगे, क्या मनुस्मृति सही में वाकई में जन्मजात वर्ण व्यवस्था को समर्थन करता है या नहीं। तो हम अभी प्रथम अध्याय से शुरुआत करेंगे और उसके हिसाब से फिर आगे चलेंगे। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था, मनुस्मृति का प्रथम अध्याय का द्वितीय श्लोक वो इस तरह से है। भगवन् सर्ववर्णान् यथा वदनुपूर्वशः अन्तर्प्रभवानां च धर्मात्रो वक्तुमर्हसि। अब सभी शब्दों का यहाँ पे अर्थ दिया गया है। भगवान मतलब हे भगवान, सर्ववर्णां संपूर्ण वर्णों के, च और अंतर्प्रभावानां अंतर प्रभावी अनुलोम और प्रतिलोम वर्णों के अनुपूर्वशः क्रम से, यथावत यथोचित धर्मान धर्मों को न हमसे वक्तुम कहने को अहर्षि, आप योग्य हैं। तो मनुस्मृति से प्रार्थना किया जा रहा है और उन्हें कहा जा रहा है कि हे भगवान, भगवान होता है मतलब कि जो संपूर्ण ऐश्वर्य वीर्य यश लक्ष्मी ज्ञान वैराग्य इन 6 गुणों से जो पूर्ण होता है उसे भगवान कहते हैं। तो मनु से प्रार्थना किया जा रहा है कि अब चारों वर्णों के जो ड्यूटीज हैं उनके धर्म को आप कहिए। यहाँ पे शब्द प्रयोग किया गया है अनुलोम और प्रतिलोम वर्णों के। मतलब अनुलोम मतलब होता है जब एक ऊंचे वर्ग का मतलब कि वर्ण का व्यक्ति अपने से नीचे वर्ण की लड़की से शादी करती है। प्रतिलोम जब होता है जब नीचे वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण के महिला से शादी करता, विवाह करता है, उसे प्रतिलोम कहते हैं, उससे जो बच्चा होता है। तो जब अनुलोम और प्रतिलोम आया, मतलब कि उच्च वर्ण के पुरुष और नीच वर्ण के महिला, तो इससे तो साबित हो जा रहा है कि जो जन्म व्यवस्था है, सॉरी वर्ण व्यवस्था है, वो जन्म आधारित ही है। क्योंकि अगर जन्म आधारित नहीं है तो फिर ये अनुलोम और प्रतिलोम कहाँ से आ गया? अब 2 वर्ण के शादी कर लिए, अब उनका वे पुत्र होता है या पुत्री होती है, अब वो कौन सा प्रोफेशन अपनाएगा, कौन सा कार्य चुनेगा, ये तो उम्र के बहुत ही बाद में, बाद के समय पता चलता है। पर यहाँ ही उन्हें अनुलोम डिसाइड कर दिया गया है कि वो मतलब कि अनुलोम है, और फिर एक प्रतिलोम जो नीच वर्ण के पुरुष और ऊपर ऊपर ऊंचे वर्ण के महिला के जो संसर्ग से जो उत्पन्न होते हैं उसको। मनुस्मृति के उसके बाद के श्लोकों में पृथ्वी और विश्व का मतलब कि कैसे एग्जिस्टेंस में आया, मतलब कि क्रिएशन कैसे हुआ, इसके बारे में बताया गया है। लेकिन फिर आते हैं मनुस्मृति के ही पहले अध्याय के ही श्लोक संख्या 31। हाँ, श्लोक संख्या 31 वो इस प्रकार है। लोकानां तु विविधाद्यर्थ मुख बाहुरुपादतः ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं शूद्रं च निर्वर्त्ययत्। और यहाँ पे जो वर्ष में श्लोक में जितने भी शब्द प्रयोग कहेंगे उनका संस्कृत से हिंदी में भी अर्थ दिया गया है। जैसे तू मतलब क्या होता है, और लोकानाम लोकों की, विविध्यर्थम यानी वृद्धि के निमित्त यानी वृद्धि के लिए, मुख बाहु उडुपादतः, मुख बाहु उडु और चरण से, यानी मुख बाहु यानी बाजू, उडु यानी जंघा और चरण यानी पैर से। ब्राह्मणम, ब्राह्मण को, क्षत्रियम क्षत्रिय को, वैश्यम वैश्य को, च और शूद्रम शूद्र को निरवर्त्यत रचता हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि पृथ्वी या संसार की वृद्धि के लिए, उसके पर ऊपर चलने के लिए ब्रह्मा ने अपने मुख से ब्राह्मण को जन्म दिया, अपने कंधों से क्षत्रियो को, जंघों से वैश्य को और पैरे से शूद्र को। तो मतलब कि एक वर्टिकल हम देख रखते हैं, पिरामिडिकल एक लाइन है जो ऊपर से नीचे जा रहा है। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि सर मतलब समझना चाहिए इंटेलेक्ट यानी ज्ञान यानी मस्तिष्क से जुड़ा कार्य वो जो करता है, इसलिए वो ब्राह्मण, इसलिए उसे मुख से जन्मा कहा गया है, जिसका कार्य है पूजा पाठ करवाना ज्ञान से से संबंधित। क्षत्रिय जंघा सॉरी क्षत्रिय को बाजुओं से, क्योंकि बाजू एक शौर्य और ताकत को प्रतीक है। और इसी तरह चरण के बारे में कहा गया है कि वो सर्विस से रिलेटेड है, एक शूद्र सर्विस का कार्य करते हैं, ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करते हैं, इसलिए उन्हें शूद्र कहा गया है। तो यहाँ पे ऐसा कहा गया है, लेकिन जैसा कि हम देखे हैं कि प्रथम अध्याय के दूसरे अध्याय में ही प्रतिलोम और अनुलोम का व्यवस्था आ चुका है। तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग को समझना ये है कि ये इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मुख और जो ज्ञान का कार्य करेगा वो ब्राह्मण बनेगा, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में ये इस तरह है, जैसे मैं अब ब्राह्मण को मुख से प्रकट किया, यानी पहले प्रकट किया फिर ब्राह्मण उसको कहा गया और उसको उसके हिसाब से कार्य दिए गए, यानी वेदों का अध्ययन, दान लेना और बहुत सारे 6 कार्य दिया गया है उनको। तो ये जन्म आधारित ही है, यहाँ से भी साबित हो जाता है, और बाकी अन्य श्लोक भी हैं इसी अध्याय में। अब आगे की ओर हम देखेंगे श्लोक संख्या, श्लोक संख्या पहले अध्याय का ही श्लोक संख्या 87। हाँ, प्रथम हाँ, यहाँ पे श्लोक संख्या 88 है और यो इस तरह है। अध्यापन मध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहम चैव ब्राह्मणा नाम कल्पयत। यहाँ पे मनु ने ब्राह्मण के कार्यों को बताया है, उसका क्या क्या कार्य करना है। उसका कार्य बताया गया है वेद को पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना, दान देना, दान लेना, ये सब कार्य ब्राह्मण ने ब्राह्मण को दिया है। तो यहाँ पर ऐसा है कि ये सब जो कार्य ये ब्राह्मण को अलॉट किया गया है, ये नहीं कि ये जो कार्य जिसको अलॉट किया गया है वो ब्राह्मण होगा। इस डिफरेंस को समझिए, वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से जन्म आधारित ही है, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। इसलिए मुझे जहाँ तक लगता है कि इस वर्ण व्यवस्था है जो जाति आधारित वर्ण व्यवस्था है, जन्म आधारित, उसका वर्तमान समय में या कभी भी बहुत ही सही नहीं है, और ऐसे इस व्यवस्था का या जो भी इस व्यवस्था का समर्थन करता है उसका विरोध होना चाहिए। अब हम आगे देखेंगे वर्ष नंबर, हाँ ये वर्ष संख्या है, वर्ष संख्या है हाँ 91। एकमेव तु शूद्रस्य प्रभु कर्म समादिशत् एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषामनसूयया। ब्रह्मा जी ने शूद्र का, हाँ मतलब कि इन तीन तीनों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्णों की कपट रहित सेवा करना करना ही एक मुख्य कर्म कहा है। मतलब कि शूद्र को सिंपली ऐसा कहा गया है कि आपको ऊपर के तीन वर्ण जितने भी वर्ण हैं उनकी आप सहायता कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। तो इस तरह से हम देखते हैं जो शूद्र समाज है, जो अभी भारत का बहुजन वर्ग है, जो जनसंख्या का 75% हिस्सा है, उससे सिर्फ ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन तीन जाति वर्ण के लोगों को सेवा करना ही उनका कार्य है बस, और उनको कोई राइट्स नहीं दिया गया है। अब यहीं पे वन जाति जाति आधारित तो वन व्यवस्था का सबसे अच्छा प्रूफ यहाँ पे है, ये श्लोक संख्या 92 है। ऊर्ध्वम नाभे में नाभेर मेध्यतर पुरुषः परिकीर्तितः तस्मान् मेध्यतम तवस्य मुखमुक्तम स्वयंभुवः। यानी ब्रह्मा जी ने पुरुषों को नाभि से ऊपर विशेष पवित्र कहा है और उसका मुख उससे भी अति पवित्र कहा है। यानी नाभि के ऊपर के जितने भी अंग है वो पवित्र है और मुख को सबसे पवित्र कहा गया है। अब ये देखिए, नाभि के ऊपर वाले हिस्से यानी कंधे और मुख से ब्राह्मण और क्षत्रिय पैदा हुए हैं, तो ये दोनों सबसे पवित्र हुए हैं। यहाँ पे जो जन्म आधारित वन व्यवस्था है, या जो कहते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण सबसे ऊपर है अशूद्र सबसे नीचे है, तो यहाँ पे ब्रह्मा ने स्वयं क्लियर कर दिया है मनु के सहारे। मनु मनु कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने पुरुषों के नाभि के ऊपर को हम सबसे पवित्र माना है और मुख को सबसे पवित्र माना है। तो यहाँ पे क्लियर होता है कि शूद्र और वैश्य भी अपवित्र हैं, यानी अपवित्र वर्ण हैं। अब आगे के भी काफी सारे श्लोक हैं, उसमें से हम देखेंगे। हाँ, ये वर्ष संख्या 93 है। उत्तमांगे द्वावा ज्येष्ठा द्वानश्चैव धारणात् सर्वस्वैवस्य सर्गस्य धर्मतो ब्राह्मणः प्रभुः। मतलब उत्तम अंगों से उत्पन्न होने के कारण और सब वर्णों में प्रथम होने से, वेद की भी रक्षा करने से, इस सब सृष्टि का धर्मों का उपदेश देने से स्वामी ब्राह्मण ही है। यानी मुख से उत्पन्न होने के कारण और वेद का अध्ययन और अध्यापन कराने वाले करने की वजह से सबसे जो पवित्र वर्ण है ब्राह्मण है। यहाँ पे क्लियर क्लियर लिख दिया गया है, मुख से उत्पन्न हुआ है इसलिए सबसे पवित्र है। तो यहाँ फिर से जन्म आधारित वन व्यवस्था पे मुहर लगती है। और बाकी अन्य श्लोक भी कुछ ऐसा ही है, आगे के भी वर्ण व्यवस्था को जाति आधारित ही बताता है। ये तो प्रथम अध्याय ही है। और इस चीज को हम महसूस भी कर सकते हैं कि ब्राह्मण का समाज में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा होती है, लोग उसके आगे पैर झुकाते हैं, सर झुकाते हैं, नमस्ते करते हैं, और ब्राह्मण अपने से ज़्यादा उम्र के बच्चों को भी कभी भी सॉरी अपने से ज़्यादा उम्र वाले के भी प्रणाम नहीं करते। यानी उनमें जो ये ऊंचा होने का भाव है ये सबसे ज़्यादा है। और देखते हैं दलितों पे जो अत्याचार होता है शूद्रों पर, कहीं ना कहीं ये सब इन्हीं सब चीज़ों से गाइडेड है या इंस्पायरेशन प्रेरणा पाता है। हालांकि सभी लोग मनुस्मृति नहीं पढ़ते, पर मनुस्मृति कभी ना कभी बहुत पहले लागू किया गया था समाज को, चार वर्णों में, फिर पांच वर्णों में ऐसे कर करके बांटा गया था, और उसी सिस्टम पे अभी तक हमारा समाज चल रहा है, जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि एक बहुत बड़ा वर्ग शिक्षा से, सुख से, बहुत सी चीज़ों से वंचित रहा, काफ़ी उस पर शोषण हुआ। ये प्रथम अध्याय ही है, बाकी आगे के दूसरे तीसरे चौथे जो भी है, बहुत सारे 12 चैप्टर हैं शायद इसमें, सब इस जो मनुस्मृति के हिसाब से, मतलब कि उनको बांटा गया है, मतलब कि क्या कहते हैं, मतलब कि उन्हें उन्हें क्या जो इनक्विलिटी है, बेस्ड इक्नोलिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है, उसको कहा गया है। तो आज प्रथम अध्याय के लिए इतना। अब हम अगले पॉडकास्ट में मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय पर चर्चा करेंगे।